नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ईरान की राजधानी तेहरान में बासिज मुख्यालय और आंतरिक सुरक्षा कमान केंद्रों पर इसराइल के हमलों से पश्चिम एशिया में जारी संकट और गहरा गया है। इसराइली रक्षा बल IDF ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन लक्षित कमान केंद्रों का इस्तेमाल ईरान में नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया जाता था।
इसराइल रक्षा बल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य प्रणालियों को भी निशाना बनाया। इसराइली वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो ईरान की वायु क्षमताओं पर हमले जारी रखे हुए है और वायु रक्षा प्रणालियों का संचालन करने वाले ईरानी सैनिकों को मार गिराया गया है। इसराइल की वायुसेना ने बैरूत में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। उधर अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में ईरान में अब तक 1097 नागरिक मारे जा चुके हैं। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान साइप्रस पर हुए हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस साइप्रस में युद्धपोत और वायु रक्षा प्रणाली तैनात कर रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मरियानो ग्रासी ने कहा कि ईरान में परमाणु बम बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण फंसे यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विमानन कंपनियों की आज 58 उड़ानें संचालित करने की योजना है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि इनमें इंडिगो की 30 और एयर इंडिया तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की 23 उड़ान शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टेलीफोन के जरिए इस नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है। नंबर हैं 1-1-8-7-9-7, 0-1-1-2-3-0-1, 2-1-1-3, 0-1-1-2-3-0-1, 4-1-0-4 और 0-1-1-2-3-0-1-7-9-0-5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल राष्ट्रपति स्टब से होने वाली मुलाकात और रायसीना संवाद में उनके मुख्य भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज सवेरे नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्री स्टब रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हैं। भूटान के विदेश मंत्री दीनानाथ धुंगेल और माल्टा के उप प्रधानमंत्री इयान बोर्ग आज नई दिल्ली पहुंचे। वे 11वें रायसीना डायलॉग में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और भूटान के बीच साझेदारी प्रगाढ़ आपसी भरोसे और सद्भावना पर आधारित है। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है।
देश भर में ढोल की थाप और होली है की गूंज के साथ वातावरण खुशियों के रंगों से सराबोर है। बसंत की बयार के आगमन के साथ गुजिया की मिठास और ठंडाई की खुशबू से होली का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। होली न केवल रंगों का उत्सव है बल्कि ये प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। खाकी चूनी देह की फीका हर बंधेज, जिसने रंगा रूह को वो सच्चा रंगरेज। आकाशवाणी की ओर से आप सभी श्रोताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरल के सबरीमला मंदिर में स्वर्ण चोरी के मामले में आरोपी त्रावण को देवास्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्म कुमार को कुल्लम सतर्कता न्यायालय ने जमानत दे दी है। न्यायालय ने सबरीमला मामले में उनकी याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोलकाता में T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में कांग खाई शिंग और आरोन ताई ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। मलेशिया की इस जोड़ी ने आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।